सोमवार को 10 अक्टूबर 1966 का क्लास चल रहा था। बात चल रही थी कि स्त्रियों को फंसाने के लिए, भक्ति मार्ग में दासियां बनाने के लिए चित्र भी बनाई दिए कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती थी। पांव दबाती थी तो देखो पवित्रता पतिव्रता थी ना, तो बेचारे पति भी थक करके आते हैं तो अपने पांव दबाते हैं, तो सीख करके ये सन्यासी भी पांव दबाते हैं। अपनी स्त्रियों को छोड़ देते हैं और छोड़ करके फिर भी चहचहटियां करके उनके पांव दबाती हैं। देखो कितना धोखा है। बाबा ने ऐसे बहुत देखा है। अब ये ढेर बातें समझी ना, माइयां जाती हैं भावना लेकर के, कभी उनकी भावना थोड़ी कुछ पूरी हो गई तो मरी उनकी पिछाड़ी एकदम अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की भासना कोई भी पूरी हुई तो देखो ये मरी। यहाँ तो तुम जानते हो कि हमारी 21 जन्म की सुख की आस की भावना पूरी हो रही है और इसमें कोई भी पांव वाव दबाने की कोई बात तो है नहीं। यहाँ तो सिंपल पढ़ाई पढ़ने की बात है। बाप कैसे आकर के पढ़ाते हैं? कोई साधु संत तो आकर के बता ही नहीं सकते, और बाप खुद ही आकर के बोलते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी का भी पांव दबाया, अभी अर्थ तो कोई ने समझाई नहीं है। ये तो बुद्ध रूपी पांव को दबाने की बात है। अंतस मन को तसल्ली देने की बात है। और न कोई द्रौपदी को पांच पति ही थे, पति तो रक्षक को कहा जाता है। बातें तो यहाँ की है, कन्याएं सर्विस फील्ड पर जाती हैं, सेंटर बदलते रहते हैं, तो उनकी रक्षा करने वाले पांडव भी बदल जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पति हो गए। तो देखो ये ही बनावट है। और न इस बनावट को कोई ने करके बोला, ये तो बाबा ने आकर के हमको समझाया है कि बाबा आकर के कहते हैं बच्ची तुम भक्ति करते करते थक गई ना, तो ऐसे ही हंसी कुड़ी के लिए अच्छा अभी हम तुम्हारा सब प्रकार का दुख दूर कर देते हैं, थकान दूर कर देते हैं, तो वो तो तुम जानते हो कि बरोबर अभी हमने समझा कि भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाया, धक्के खाते खाते एकदम थक गए और पतित बन गए, दुनिया एकदम गंदी बन गई। देखो अभी इस दुनिया का हाल ही क्या है, अभी बाबा हमारे साथ थकान दूर करके कितना कल्याण कर दे, तो ये बुद्ध रूपी पांव के थकान की बात है ना। फिर 21 जन्म हम कभी भी दुख नहीं देखेंगे, कोई प्रकार का दुख नहीं, जरा भी दुख का नाम निशान नहीं। बाकी होता क्या है कि हमको तो ऊंचा पद चाहिए, तो जितना पद ऊंचा होगा तो सुख भी जास्ती होगा। पद नीचा होगा तो सुख भी कम होगा। बहुत सुख होगा तो बंगला भी तो अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा होगा ना। तो देखो नई दुनिया में सभी के बंगले तो हीरे जवाहरात के नहीं बनेंगे, तो फर्क तो जरूर होगा। फिर भी फर्क देखने में तो आवेगा ना, कहां कोई के हीरे जवाहरात रूपी बंगले, ये संगठन के बंगले हैं, कोई को उतना बड़ा संगठन उतना अच्छा संगठन नहीं होगा। फिर ये भी तो समझ में आता है ना, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, तिरसठ जन्म में भी ऐसे कर्म किए हैं ब्रॉड ड्रामा में, और शूटिंग पीरियड में भी संगम युग में ऐसे कर्म किए, क्योंकि वो राजा बनता है तो कोई फलाना बनता है, तो भी तो ऐसे कहेंगे ना कि पास्ट में इसने ऐसा कर्म किया है जो ये राजा बन गया, और ये देखो बेचारे गरीब बने हुए, ये तो जरूर समझ में आएगा ना, क्योंकि दुनिया तो कोई खत्म तो होती नहीं है, ये भी तो जो पद है ये भी तो पद है ना, ये तो जरूर गाएंगे कि भाई इसका ऊंचा पद है, जरूर फिर ये तो कहेंगे ना, इन्होंने देखो ये ऐसे अच्छे कर्म किए जो इतना ऊंचा पद बना है। वहां का कुछ काम खराब नहीं होता है, परंतु गायन तो फिर भी होना चाहिए ना। ये जो बड़े बनते हैं, साहूकार बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते, कुछ फर्क तो दिखाई देगा ना। तो जरूर इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है आगे। संगम युग में या पूर्व जन्म में तो उन्होंने ऐसा ये ऊंच पद पाया। आगे उन विचारों को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो बाप बैठ करके इनको ऐसे कर्म सिखलाते हैं। जो ऐसे कर्म वाले बनते हैं, जैसे ये लक्ष्मी नारायण, तो जरूर ये समझेंगे तो ना, भाई ये गरीब हैं, ये साहूकार हैं, जरूर अंतर है तो इनके कर्म का फल है। तो ये बाप आकर के शिव बाबा कर्म सिखलाते हैं, जिन कर्मों से वो ऐसे बने हैं। तुमको भी कहते हैं कर्म ऐसा करो जो ऊंच पद पाओ, नहीं तो वहां भी ये तो समझेंगे ना, भाई इसने कुछ आगे अच्छा कर्म किया जो राजा बना है, उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो ये गरीब बना है, तो कर्म तो फिर भी कहेंगे ना सही। अच्छा बाकी यहाँ जरूर है कि यहाँ कर्म कोई भी करे तो भी दुख है, वहाँ कोई भी है गरीब है साहूकार है वहाँ तो सभी को सुख है, वो तो है ही स्वर्ग, परंतु फिर भी कुछ तो फर्क होगा ना। यहाँ भी ऐसे ही कहते हैं, वहाँ भी ऐसे ही चाहिए, वहाँ उनको मालूम नहीं है क्या मैंने स्वर्ग के लिए कौन और कब कितने कर्म किए। तो अभी बाप कहते हैं कि मैं कर्मा कर्म गति की को जानता हूँ और तुमको समझाता हूँ, बरोबर वहाँ साहूकार गरीब दुखी कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रावण राजी ही नहीं है। पर वो जो है फर्क है कि फिर कोई राजा है, कोई कहा कैसा है, कोई कैसा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, तो भी ये बात समझ में तो आएगी ना, ये राजा क्यों बना है। स्वर्ग में कोई राजा क्यों बना और प्रजा क्यों बना, समझ में तो आया। बहुत सेवा की है तो राजा बना है, और है ज्ञान उठाया ही नहीं जो दूसरों को समझा सके, तो जाकर के प्रजा में गिरा। तो भी ये तो होगा ना पास्ट में, क्योंकि दुनिया तो चलती है ना, पास्ट में चली थी। तो देखो इस समय में तुम जो जो जैसा जैसा कर्म करेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ फल पाएंगे। तो कर्म तो करना ही है ना बच्चे, ये कर्म क्षेत्र है जो गीता में आया है, धर्म क्षेत्र कर्म कुरुक्षेत्र। कुरु माने करना, ये संगम युग में कुरुक्षेत्र है, सभी धर्मों का युद्ध क्षेत्र है। जहाँ बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो और एक मेरी शरण में आ जाओ, फिर भी देखो कैसे कैसे कर्म करते रहते। कोई बच्चे बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जैसे बाबा रोज महिमा भी करते हैं, रोज तो कोई की एक एक की महिमा नहीं होती है ना, बाकी बाबा मिसाल देते हैं कि देखो वो बच्चा सेवा की बहुत तांत लगी हुई है, दस अक्टूबर छह चक्की वाणी का आठवां पे। कोई पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या जो मैं इतनी नई सर्विस कर सकता हूँ, नहीं जितना होती है जितना सर्विस कर सकेंगे तो तुम्हारी सर्विस आगे बढ़ती जाएगी, आप ही ऑटोमेटिकली सबकी सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। जो अभी थोड़ी सर्विस करते हैं आगे चल के उन्हों की भी सर्विस वृद्धि को पाती जाएगी। देखना ढेर हो जाएंगे। कौन? सर्विस करने वाले ढेर हो जाएंगे, निकलते जाएंगे, सर्विस करने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलते जाएंगे। बाबा की समझ में नहीं आया ब्रह्मा बाबा को कि आखिर ऐसा क्या होगा जो ढेर के ढेर सर्विस करने वाले निकलते जाएंगे। अच्छा चलो बच्ची टोली ले आओ। बाबा तो कहे हाँ जल्दी जल्दी होवे, परंतु पढ़ाई में तो टाइम सीमित हो जाएगा। जल्दी तो जा ही नहीं सकेंगे, बाकी अर्थ तो दो है ना कि बाकी थोड़ा रोज है, फिर पुरुषार्थ करें। जो पुरुषार्थ करके हम भी वहां उच्च पद पावे। हाँ ये तुम चक्कर लगाओ, चक्कर लगाते जाओ उठाते जाओ। एक एक करके बहुतों को उठाते जावे। उठो आप ही एक एक उठो। अच्छा अभी समझा? तो गौ तो गाय हुई है कृष्ण की गौ। अभी देखो कृष्ण की गौ तो है ही नहीं, है कृष्ण की गौ है क्या? ये तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा इन बच्चों को ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कोई उगारी करते हैं कोई नहीं करते हैं। जो उगारी करते हैं वो गौएं, जितना जितना ज्ञान घास उगारी करेंगे आपस में लेन देन करेंगे तो अच्छा ज्ञान दूध देने वाली गैया बनती है। बोलता है इन बातों को फिर से उगारते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, क्योंकि विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बहुतों को ज्ञान का दूध पिलाते रहेंगे, बहुतों को सुनाएंगे ना। धारणा पक्की हो जावे तो बच्चों को रोज खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए ना। ये समझाना चाहिए कि बाकी 10 वर्ष हैं, अरे वैसे 10 वर्ष भी लंबी आयु है, किस बात के लिए हैं? 10 वर्ष भी लंबी आयु किस लिए बताई? और खास बताई गऊओं के लिए, है बाबा जिन बच्चों को इमर्ज करते हैं उनके लिए भी ये बात लागू, और जो इमर्ज नहीं हुए वहां सामने ही बैठे हुए थे उनमें से भी कोई गौ आ गई होगी ना, है जो ज्यादा घास की उगराई करके ढेर का ढेर दूध देने वाली बन जाए। बाबा की बुद्धि तो जाती है तो बोला कि जो बाकी 10 वर्ष हैं ये भी बहुत हैं पुरुषार्थ करने के लिए। बहुत क्यों बताए है? क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में शास्त्रों में दिखाया है कि बड़ी आयु किसकी होती है, राधा की या कृष्ण की? हैं? तो ज्यादा पुरुषार्थ कौन करेगा? इसलिए बोला ये 10 वर्ष भी आयु बहुत लंबी है। किसके लिए बोला? गौ के लिए बोला या कोई अदर कुमारों के लिए बोला? कुमारों के लिए बोला है, गौ के लिए बोला ये दशवर्ष भी बहुत है, लंबी आयु है पुरुषार्थ के लिए, परंतु क्या करें, ये सृष्टि भी कोई थोड़ी थोड़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी सृष्टि है। तो सर्विस भी तो बहुत करनी है, मना ब्रह्मा बाबा की समझ में नहीं आया ये दस वर्ष किस लिए बोले गए, इसलिए बोले गए हैं नर से नारायण पद पाने के लिए या नारी से लक्ष्मी पद पाने के लिए बोले गए। बाकी सृष्टि तो लंबी है, पूरी सृष्टि की सेवा करने में तो लंबा टाइम लगता है। सबको पैगाम पहुंचाना है, तुम पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर बच्चे हो ना, पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो और मैसेंजर के बच्चे मैसेंजर हो। हम धर्म पिताओं को भी पैगंबर मैसेंजर कहते हैं। बड़े से बड़ा पैगंबर कौन हुआ है जो तुम बच्चों के लिए नई दुनिया का पैगाम लेकर के आया है। मैं रोज तुमको कोई भी प्रकार से पैगाम देता रहता हूँ, अभी जा करके तुम मैसेज दे नहीं सकते हो तो अखबार द्वारा भी तुम्हारा मैसेज पहुंच जाएगा, सारी दुनिया में तो तुम नहीं पहुंचेंगे परंतु ये अखबार तो सारी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये तुम एक दिन देखेंगे कि अखबारों में भी ये चित्र निकलेंगे, बड़ी बड़ी अखबारों में, क्योंकि बड़ी बड़ी अखबारें सब जगह जाती है। कौन से चित्र निकलेंगे, बाबा ने किन चित्रों की तरफ इशारा दिया है, वही साक्षात्कार से जो 30x40 इंच के तैयार हुए थे चित्र, उन्हीं चित्रों की तरफ बाबा ने इशारा दिया। और अभी क्या हुआ, बेसिक में उन चित्रों को ही उड़ा दिया। तो ये बात किसके लिए लागू हुई है, जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, दस वर्ष के बाद जब लक्ष्मी नारायण का पद डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो बच्चे इन चार चित्रों को इतना चारों ओर फैलाएंगे जो अखबार वाले भी डालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन अखबार वालों की बहुत बहुत कितनी लाखों लाखों की संख्या होती है पढ़ने वालों की, तो जरूर लाखों मनुष्य पढ़ते होंगे। यहाँ का अखबार विलायत में भी चला जाता है और विलायत की अखबार यहाँ आ जाती है, और वो भी किस्म किस्म की अखबार है। तो ये तो बहुत तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये तो बहुत अखबारों में तुम्हारी ये चित्र डल जाएंगे और तो कुछ नहीं कर सकेंगे, जाते कुछ तो जाएंगे, कुछ फिर ये चित्रों से निकलेंगे। तुम्हारे चित्रों से ऐसे अच्छी तरह से वो समझ जाएंगे जो समझ जाएंगे कि ये जो भी है ये बरोबर गॉड फादर ही नॉलेज दे सकते हैं, और ये इस प्रकार की चित्रों पर समझानी सहज दे करके कोई भी नॉलेज नहीं दे सकते। बाकी नॉलेज तो समझ जाएंगे ना, फिर किस बात की कमी रह जाती है, है? विलायत वाले भी नॉलेज को समझ जाएंगे, दुनिया वाले भी समझ जाएंगे, परंतु कमी किस बात की रहती है, है? मेहनत है ये मन मना भव की, तो पीछे नहीं, सब कोई ऐसे पीछे नहीं बन सकते हैं ना, क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि उस समय माहौल शांति का होगा या अशांति का माहौल हो जाएगा, दुनिया में अशांति का माहौल हो जाएगा, वो तो फिर जैसे ड्रामा का प्लान है ऐसे ये भारतवासी ही मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हैं? शांति के पीरियड में जब तक दुनिया में लड़ाई झगड़े नहीं जोर से शुरू हुए हैं, तब तक ये भारतवासी शांति के टाइम पर पढ़ाई पढ़ लेते हैं। जो फिर यहाँ स्वर्ग की स्थापना में काम आती है, बाकी तो सब चले जाएंगे अपना अपना हिसाब किताब चुपचू करके। कहाँ चले जाएंगे हैं? दुनिया वाले और धर्म की आत्माएं जो सूर्यवंशी नहीं होंगे वो तो अपने हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे, परमधाम चले जाएंगे, और तुम बच्चे शरीर से इसी दुनिया में रहेंगे और इसी दुनिया में ऊंचे पद पाएंगे। सिर्फ बुद्ध योग से जाने की बात है, तो देखो जिसको जो पार्ट मिला हुआ है तो अपना उसी अनुसार हिसाब किताब चुकतू करके, फिर भी तो वो ही एक्टर्स वापस जाएंगे ना, और नंबर वार वो ही आकर के अपना एक्ट करेंगे। अभी समझा ना बच्ची, ये तो तुमको सारी दुनिया को, सारी दुनिया के एक्टर्स को ये ड्रामा बना हुआ है ना, ये दुनिया के एक्टर्स है ना, इतने धर्म है उसमें भी मुख्य धर्म तो यही है ना, कौन सा? देवी देवता सनातन धर्म। बिगिनिंग टू एंड, आज से अंत तक पार्ट बजाने वाला, तो मुख्य धर्म ये हुआ। क्यों? क्योंकि जिसने आदि देखा आदि सो अंत भी नहीं देखेंगे, जिन्होंने अंत देखा वो अंत देखने वाले कैसे हो गए, सब कुछ देखने वाले बन गए। अभी बिगनिंग टू एंड तुम्हारा धर्म है, ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं, विद्वान आचार्य पंडित की बुद्धि में ये कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी बुद्धि में है कि तुम ही बैठे हो जिन्होंने ये 84 जन्म पूरे किए हैं। तो जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि आत्मा 84 जन्म भोग करके अनुभवी बन गई। तो अनुभवी जल्दी समझेंगे, या जिनको प्रैक्टिकल में अनुभव ही नहीं हुआ वो जल्दी समझेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा, और कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों प्रति ये बच्चों की स्पेशलिटी क्यों बता देते हैं? है मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति, औरों के प्रति नहीं है, पहले ही बता देते हैं ताकि ये कोई न कहे ये पार्शलिटी क्यों करते हैं। भगवान वार्ड फादर है तो याद प्यार बराबर देना चाहिए। आत्मा तो सभी है ना, सभी बच्चे रूह है ना, तो रूह यानी बाप को पार्शलिटी करनी चाहिए प्यार देने में, है नहीं करनी चाहिए। सब पक्के पक्के 84 जन्म वाले रूह बनते हैं फिर, तो जितनी जो रूहानियत को धारण करते हैं उतना भगवान का याद प्यार लेने के भी वारसदार बन जाते। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।